તારીખ 9/9/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 અને 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 506
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્ર 569 કા શેષ અંશ કલ રાત સે અધ્યાય ચલા થા આત્મ પરિણામ સે જીતના અન્ય પદાર્થ કા તાદાત્મ અભ્યાસ નિવૃત હોના ઉસે શ્રી જિનેન્દ્ર ત્યાગ કહેતે હૈ ધર્મ કે ક્ષેત્ર મેં ત્યાગ કા એક મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણ હૈ સભી ધર્મ કે સંપ્રદાય મેં કુછ ને કુછ અંશ મેં ત્યાગ હોતા હૈ ત્યાગી હોતે હૈ પર વો ત્યાગી ત્યાગ ભી થોડા બહોત કરતે હૈ જૈન સંપ્રદાય મેં સબસે અધિક ત્યાગ હૈ જગત કે દૂસરે સંપ્રદાય કી તુલના મેં જૈન સંપ્રદાય મેં ત્યાગ અધિક હૈ ઓર જૈન સંપ્રદાય મેં ભી દિગંબર સંપ્રદાય મેં ત્યાગ સબસે અધિક હૈ इससे ये जाना जाता है कि त्याग का महत्व धर्म के क्षेत्र में तो है ही और बहुत है। जितना त्याग ज्यादा होता है उतना उसका मूल्य भी ज्यादा है। ऊपर ऊपर से तो वो बात समझ में आती है कि जितना त्याग जाता ज्यादा इतना उसका मूल्य भी ज्यादा, परंतु सम्यक प्रकार से त्याग होना जरूरी है। अगर त्याग सम्यक प्रकार से नहीं होता तो उस त्याग का मूल्य कुछ नहीं है। ऐसा भी है कि त्याग होने पर भी इस त्याग का मूल्य कुछ भी नहीं है। तो सम्यक प्रकार से जो त्याग है, त्याग के प्रकरण में सम्यक प्रकार के त्याग कैसे शुरू होता है, कहां से शुरू होता है और आगे बढ़कर के उसका कैसा पद्धति है, कैसी पद्धति है, वो बात समझने लायक है। तो कृपालु देव ने प्रारंभ की बात किया है यहाँ पर, पहले पूर्ण त्याग की बात कर दिया कि सम्यक प्रकार से पूर्ण त्याग होगा तो ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा, यानी केवल ज्ञान हो जाएगा। और जिसको केवल ज्ञान होगा उसको सम्यक प्रकार से परिपूर्ण त्याग होगा होगा और होगा ही। वो बात तो पूर्णता के किया। अब कहते हैं कि आत्मा के परिणाम से, यानी आत्मबुद्धि से, आत्मभाव से जितना अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास निवृत्त होना, अन्य पदार्थ के साथ तद आत्मवृत्ति, उसको तादात्म अध्यास कहते हैं। तदात्म वृत्ति, तन्मय वृत्ति, आत्मा रूप वृत्ति। पदार्थ आत्मा नहीं है, अनात्मा है अन्य पदार्थ, तो फिर भी उसके साथ आत्मवृत्ति से, तदात्म वृत्ति से, तन्मय वृत्ति से जो परिणाम होते हैं उसको कहते हैं अध्यास, भ्रम, उसका नाश होना। अध्यास का नाश होना वही जिनेन्द्र ने त्याग कहा है। यहां से त्याग शुरू होता है, इसलिए यहां से त्याग शुरू किया है कि अगर तदात्म वृत्ति जो अनादि से है वो रही तो पर पदार्थ के साथ तो तन्मयता रही, और क्षेत्र से त्याग कर दिया, फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाया, भाव में तो तन्मयता रही, तो नुकसान तो भाव में होता है। नुकसान कहाँ होता है?
भाव में।
नुकसान तो भाव में होता है। भाव का नुकसान चालू रह गया और क्षेत्र से दूरी कर दिया, तो वो दूरी किस काम की? उस दूरी का तो कोई मूल्य रहा नहीं। पदार्थ चाहे दूर हो या समीप हो, इससे कोई अपराध नहीं होता है। कोई पदार्थ समीप आ जाए इसलिए अपराध है, पर दूर हो जाए इसलिए निरपराध है, ऐसा तो कोई अपराध का हिसाब किताब नहीं है। अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर भगवान का समूह शरण में पौद्गलिक वैभव बहुत समीप है भगवान के पास, तो भगवान को कुछ उसका परिग्रह कहना पड़ेगा। अगर क्षेत्र से समीपता है तो भगवान को उसका परिग्रह कहना पड़ेगा। जैसे अपन जिन मंदिर में सोने का काम करवाते हैं, अगर मंदिर में सोना लगाए कि नहीं लगाए, वो जो खुदाई है उत्तर काम है, तो क्या भगवान को सोने का परिग्रह हो गया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। भाव में भिन्नता आ जाए, यानी अनादि से जो आत्मबुद्धि थी वो आत्मबुद्धि मिट जाए, तो यहां से अध्यास का त्याग से फिर त्याग शुरू होता है। पहले दूसरा कौन सा पैराग्राम है? चलो चलो, जहां जहां इस जीव ने जन्म लिया है, भाव के प्रकार धारण किए हैं, अनेक प्रकार के भाव धारण किए हैं, वहां वहां तथा प्रकार के अभिमान रूप से बर्ताव किया है। तो मैंने मैं ऐसा ही हूं, ऐसा अध्यास हुआ है, अभिमान को या अध्यास को, जिस अभिमान को निवृत्त किए बिना उस देह का और देह के संबंध में आने वाले पदार्थों का इन जीव ने त्याग किया है, अध्यास के त्याग किए बिना त्याग किया है, अर्थात अभी तक उस भाव को ज्ञान विचार द्वारा क्षीण नहीं किया, और वे पूर्वक संज्ञाएं अभी जैसी की तैसी इस जीव के अभिमान में चली आती है, बिना अध्यास तो वैसा का वैसा चला आया है, यही सारे लोक के अधिकरण क्रिया का हेतु कहा है। तो उसने सारे लोक का आधार ले लिया है, एक परमाणु का जिसने आधार लिया, इसने सारे लोक का आधार लिया, एक उदय का आधार लिया, उस सभी उदय में उसका आधार बुद्धि हो गया। एक पदार्थ में तन्मयता हुई, जगत के सभी पदार्थ में तन्मयता हो जाएगी। एक परमाणु का मोह है, उसको सारे जगत का पदार्थ का मोह है, ऐसी बात है। आरंभ और परिग्रह का मोह जो जो मिटता है, जो जो तत्संबंध नहीं अपनेपन का अभिमान मंद परिणाम को प्राप्त होता है, होता पड़ाना, क्योंकि मुमुक्षुता बढ़ जाती है। मुमुक्षुता में अपनापन मंद होता है और ज्ञान दशा में अपनापन का अभाव हो जाता है। अनंत काल से परिचित यह अभिमान प्राय एकदम निवृत्त नहीं होता, मैंने पहले मंद होता है फिर नाश होता है, ये इसका क्रम है। इसका मतलब व्यवहार से निश्चय नहीं है, पहले मंद होगा फिर अभाव होगा, ये इसका क्रम है। इसलिए तन मन धन आदि जिनमें ममत्व रहता है उन्हें ज्ञानी को अर्पित करने किया जाता है। जो तन मन धन है वो ममत्व का विषय है, वो ज्ञानी को समर्पित किया जाता है। प्राय ज्ञानी कुछ उन्हें ग्रहण नहीं करते, ज्ञानी सन्मार्ग में लगा देते, परंतु उनमें से ममत्व दूर करने का ही उपदेश देते हैं कि उनका ममत्व दूर करके तन्मन धन को सन्मार्ग में लगाओ, और करने योग्य भी यही है कि आरंभ परिग्रह को वारंवार प्रसंग में पुनः पुनः विचार करके उनमें ममत्व न होने दे, और तब मुमुक्षुता निर्मल होती ही है। जितना ममत्व तीव्र इतनी मलिनता, ममत्व मंद हुआ तो दर्शन वो भी मंद हुआ तो मुमुक्षुता में निर्मलता आएगी। ठीक है, वो बात तो जगह जगह आएगी। वह तदात्म अध्यास निवृत्त रूप त्याग होने के लिए, ऐसा अध्यास का त्याग करने होने के लिए, बाह्य प्रसंग का त्याग जो प्रयोग के रूप में होता है, वहां बाह्य प्रसंग का त्याग प्रयोग के रूप में होता है, भी उपकारी है, प्रयोग करने के लिए उपकारी है कि इसके अभाव में मेरे परिणाम कैसे रहते हैं, उपकारी भी है और कार्यकारी भी है। इसका निषेध नहीं करना चाहिए। भूमि का बाहर जाकर के कोई त्याग करता है तो वो त्याग में वो प्रयोग करेगा कि मेरे परिणाम कैसे रहते हैं, अध्यास मेरा कहाँ तक मंद हुआ है और नाश होगा कि नहीं होगा। इसलिए ऊपर की भूमिका का भी त्याग कोई करता है तो उसका निषेध नहीं करते। बाह्य प्रसंग के त्याग के लिए अंतर त्याग कहा नहीं है। अंतर त्याग जो कहा है वो तो बाह्य त्याग करने के लिए नहीं कहा है। अंतर त्याग तो अंतर त्याग के लिए कहा है, ऐसा है तो ऐसा है, तो भी प्रयोग के विषय में, तो भी इस जीव के अंतर त्याग के लिए, अंतर त्याग के हेतु से बाह्य प्रसंग की निवृत्ति यानी बाह्य त्याग करने में आए तो कुछ भी उपकारी मानना योग्य है। मैंने प्रयोग हो गए तो उपकारी मानना योग्य है। परिणाम को जांच तलाश करने के लिए ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है तो वो कार्यकारी है, उपकारी है, ठीक ही है।
कमजोर के लिए जरूरी है, कमजोर के लिए जरूरी है।
हाँ, पुरुषार्थ वाले को तो हर हालत में वो पुरुषार्थ करता है, लेकिन पुरुषार्थ वाले भी आगे जाकर के तो त्याग में आ ही जाएंगे। आगे जाकर के तो उनको रुचि तो आई नहीं, तो फिर ग्रहण करके क्या करेंगे? जिस पदार्थ की रुचि नहीं तो फिर क्या करेंगे? वो जिनवाने की स्थिति में आए ना, ज्ञान ज्योति जागे अंतर में। जब अंतर में ज्ञान ज्योति जागी, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ, रुचि बढ़ रही पुण्य समदम के, तो समदम की रुचि बढ़ जाती है, कोई ग्रहण की रुचि बढ़ती नहीं है। हाँ वो तो है, क्योंकि परपदार्थ का कोई करता हरता तो है नहीं। जो परिस्थिति ऐसी है तो परिणाम पर फिरफार करना है, बाह्य पदार्थ में फिरफार करने से परिणाम नहीं फिरता। बाह्य पदार्थ अंतर परिणाम में फिरफार करने के लिए फिरफार हो तो ठीक है, फिर भी नहीं हो तो अंतर परिणाम में तो फिरफार करना ही है, हो ही जाना चाहिए, ऐसी बात है। फिर से ले, वह तादात्म्य अध्यास निवृत्ति रूप त्याग होने के लिए, मैंने अध्यास छोड़ने के लिए, भ्रम मिटा करने के लिए यह बाह्य प्रसंग का त्याग भी उपकारी है, कार्यकारी है। अध्यास छोड़ाने के लिए प्रयोग करो, बाह्य प्रसंग के ताप के त्याग के लिए अंतर त्याग उनका उपदेश नहीं दिया है। अंतर त्याग का उपदेश का हेतु बाह्य त्याग करने का नहीं है, ऐसा है मूल में ऐसा है, तो भी इस जीव के अंतर त्याग के लिए, अंतर त्याग होने के लिए, अंतर त्याग हो जाए, अध्यास छूट जाए, इसके लिए बाह्य प्रसंग की निवृत्ति अगर करने में आए तो ये प्रयोग के कारण से उसको उपकार निमित्त मानने में आता है। जैसे कि ज्ञानी भी व्रतादि उपवास करते हैं तो क्या है कि वैसे तो असाता वेदनी नहीं है, लेकिन उपवास करने से असाता वेदनी आएगी, शरीर में जठराग्नि है असाता उत्पन्न करती है, उनको तो खुराक चाहिए। अब खुराक नहीं मिलता है उपवास के कारण तो असाता का अनुभव होगा, वो असाता के काल में वो पुरुषार्थ और बढ़ाते हैं। तो पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए बाह्य त्याग है, बाह्य त्याग के लिए अंतर त्याग नहीं है, अंतर त्याग के लिए बाह्य त्याग है, ऐसा कहने का अभिप्राय। बहुत फर्क है इसमें, वजन आत्मा में उपादान पे आता है, अगर ऐसा नहीं लिए तो वजन निमित्त में चला जाएगा, और निमित्त में वजन चला जाएगा तो उपादान का भान रहेगा नहीं। और एक जड़ क्रिया में वो देखा जाता है कि जो लोग जड़ क्रियाएं करते हैं उनको उपादान में कोई सुधार आता नहीं है, और जड़ क्रियाएं बहुत कर लेते हैं, ऐसी क्रिया निषेधनीय योग्य है, उसका निषेध करना चाहिए अवश्य। नित्य छूटने का विचार करते हैं, अब फिर अपनी बात उठाई कि हम तो ये प्रवृत्ति है व्यवसाय की, व्यापार के, इससे तो छूटने का हमेशा हमेशा विचार करते हैं, बाह्य निवृत्ति को झंकते हैं, वो कैसे मिले निवृत्ति, हम हमारा काम में आगे बढ़े, ऐसे नित्य छूटने का विचार करते हैं। और जैसे वह कार्य तुरंत पूरा हो वैसे जाप जपते हैं, व्यापार की झंझट जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए, ऐसा जाप जपते हैं। बाह्य निवृत्ति को भी उस तरह से वो अच्छी तरह चाहते हैं,
ज्ञान दशा में है जाते हैं, ज्ञान दशा होने पर भी जाते हैं,
ज्ञान दशा होने पर भी प्रवृत्ति तो जचती नहीं है, और प्रवृत्ति में उपयोग देना पड़ता है और समय और शक्ति का खर्च होता है, वो पोसाता नहीं है। नित्य छूटने का विचार करते हैं, और जैसे यह कार्य वह कार्य पूरा हो वैसा जाप जपते हैं कि हमारा उदय प्रवृत्ति का पूरा हो जाए तो ठीक है। यद्यपि ऐसा लगता है कि वह विचार और जाप अभी तक तथा रूप नहीं है, शिथिल है, हमारी जो निवृत्ति की भावना है वो बहुत तीव्र होगी तो निवृत्ति आ ही जाएगी, भावना शिथिल है ऐसा लगता है। देखो ज्ञान दशा में ऐसा लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ इसलिए आत्मा में रहता हूँ, ऐसा बचाव होता नहीं है। यद्यपि ऐसा लगता है कि वह विचार और जाप अभी तक तथारूप नहीं है, शिथिल है, अतः अत्यंत विचार और उस जाप का उग्रता से आराधन करना है, ऐसा भाव आता है, हमारी भावना तीव्र होनी चाहिए। उग्रता से आराधन करने का अल्पकाल में योग करना योग्य है, अल्पकाल में ऐसा योग करना ये योग्य है, ऐसा रहा करता है हमारे मन में, हमारे अभिप्राय में वो बात रहा करती है कि अत्यंत उग्रता से आराधन करके निवृत्ति योग उत्पन्न करें, ऐसा करना योग्य है, ये अभिप्राय हमारा रहता है कि उग्रता से हम निवृत्ति में आ जाए। याद नहीं, लेकिन लिखा तो होगा, कहाँ लिखा है अभी तो याद नहीं। प्रसंग से कुछ परस्पर के संबंध जैसे वचन एक दूसरे के पूरक वचन है, ऐसे इस पत्र में लिखे हैं। प्रसंग से मैंने कुछ अभी लिखने का प्रसंग है ऐसा जान करके सोभाग भाई को पत्र लिखा है कि आपकी योग्यता देख करके ये बात लिखने का प्रसंग हमको देखता है, और वचन भी परस्पर के अनुरूप है, एक दूसरे के पूरक है, ऐसे वचन इस पत्र में लिखे हैं वे विचार में स्फुरित होने से स्फूर्णा होगी, विचार में इस बात की स्फूर्णा होगी, कोई प्लानिंग नहीं किया था, सहज विचार में स्फूर्णा होने से आने से स्व विचार बल बढ़ने के लिए हमारा विचार बल बलवान हो जाए, इसके लिए हम भी उसमें रस लेते हैं। लिखते हैं तो शुष्क ज्ञान से नहीं लिखते, रस लेकर के लिखते हैं, इस चीज का जो भी भाव आता है उसमें हमारा रस होता है, रस होता है तो बल बल बढ़ता है। अपना स्व विचार मैंने अपना विचार बल बढ़ने के लिए और आपको आपके पढ़ने विचारने के लिए आप उसको पढ़ो और विचार करो, इसके लिए लिखे हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं, जीव प्रदेश पर्याय तथा संख्यात असंख्यात और अनंत आदि के विषय में तथा रस की व्यापकता के विषय में क्रम पूर्वक समझना योग्य होगा। कैसे समझना योग्य होगा? क्रम पूर्वक समझना योग्य होगा, ये आपके प्रश्न है, ऐसे अभी तो उत्तर में नहीं दे रहा हूं, जो भी प्रश्न आए हैं उसका अभी उत्तर देना मैं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विषय में जैसे जैसे आपकी योग्यता आती रहे वैसे वैसे वो बात हम करेंगे तो क्रम से आपको बात समझ में आ जाएगी, और क्रम से आगे की बात बता देने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान होने का ज्यादा संभव है। क्यों? कि जीव क्षोभम ज्ञान में आगे की बात भी समझ लेता है, धारणा कर लेता है, और फिर उसको आगे बढ़ने में वही क्षोभम आ जाता है। कितना विवेक है, हम सब शास्त्र पढ़ ले, आगे की बात भी समझ ले, और फिर हम आगे बढ़ने में उसी कारण से तकलीफ पाए, ये होना चाहिए तो बहुत बहुत काम किया है। हाँ, केवल ज्ञान की बातें करने लगे, करना लगेगा, शुक्र ध्यान की बातें करेंगे, क्या काम किया, वो बात अपने योग्यता अनुसार समझनी चाहिए। वो कोई प्रश्न पूछा होगा जीव के विषय में, प्रदेश के विषय में, पर्याय के विषय में, तथा संख्यात असंख्यात और अनंत की जो गिनती है, गणितानुयोग जिसको कहते हैं, इनके विषय में तथा रस की व्यापकता के विषय में आपने जो प्रश्न पूछा वो क्रम पूर्वक समझना योग्य है। आप तो जैसे जैसे योग्यता आएगी क्रम से वो बात बताएंगे, अभी बताने लायक हम मानते नहीं है। आपका यहाँ आने का विचार है तथा श्री डूंगर का आना संभव है, ये लिखा सुझाना, इनके मित्र थे डूंगर भाई, तो खुद को आने का विचार था और वो भी आने का लिखते हैं, मानते हैं तो ठीक है। सत्संग योग की इच्छा रहा करती है, हमको भी आपके सत्संग के योग की इच्छा रहा करती है, तो आइए।
नाइट के लिए आओ, ऐसा नहीं लिखा है,
जो भी लिखते हैं वो तो योग्य ही लिखते हैं, ऐसा हमने अपने को समझना चाहिए। सामने वाले की योग्यता भाव परिस्थिति सब कहीं बातें गिन करके जो भी वो करते हैं वो योग्य ही करते हैं, ऐसा लेना। ज्ञानी जो भी करते हैं योग्य ही करते हैं, ऐसा ले लेना। ऐसा कभी नहीं लेना कि अयोग्य बराबर नहीं किया, ये भूल गया, ऐसा कभी लेना
नहीं।
ऐसा लेने से और भक्ति हो जाएगी। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानी की भूल दिखने में आए तो क्या करे, अपने बुद्धि में ज्ञानी की भूल दिखने में आए तो क्या करे, किसके कि बुद्धि को एक बाजू रख देना,
बाजू नहीं रखना,
बुद्धि को हटा देना, पर नहीं माने तो थप्पड़ लगा देना। नहीं, वो मानना ही नहीं कि वो भूल करते हैं, वो भूल करते हैं ऐसा कभी मानना
नहीं,
तो बात नहीं, तो वो बात नहीं आएगी कि वो भूल किया, लेकिन हमारा देहतापन हो जाएगा तो ये बात होगी कि ऐसा ज्ञानी ने ऐसे भूल किया। ज्ञानी भी भूल करते हैं तो ज्ञानी के प्रति भक्ति रहेगी नहीं, और ये स्वच्छंद के परिणाम है। ज्ञानी भी भूल करते हैं, ये स्वच्छंद के परिणाम है, और इससे दर्शन वो अवश्य अवश्य बढ़ जाता है। भक्ति के परिणाम हुआ, अभिनय के परिणाम होंगे, और अभिनय के परिणाम होने से दर्शन मोह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लेना
कोई कारण होगा।
हम तो शुरू में वो प्रश्न पूछते थे, आपस में चर्चा करते थे कि देखो अपन गुरुदेव को बहुत सम्मान करते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, वहाँ गुरुदेव क्या गुरुदेव है, अपने समर्थ गुरुदेव है, लेकिन कभी दोपहर को 12 बजे ऐसा कहे कि ये रात का 12 बजा है और अमावस्या है, ये चंद्र भी सूर्य को चंद्र नहीं बोले, ऐसा बोले कि अमावस्या की रात है, अंधेरा है, तो क्या करना है?
मान लेना,
एक दफे तो स्वीकार लेना, फिर विनती करना कि महाराज आपने कोई गुड़ बात किया है, ऐसी कोई उत्पटांग बात आपने किया है कि मेरे दिमाग में मेरी समझ में आती नहीं है, तो ये कोई मेरी बुद्धि की वक्रता हो सकती है क्या, मेरी बुद्धि की वक्रता हो सकती है, कृपया कृपा करके इसका रहस्य तो समझाइए कि आपका रहस्य क्या है, ऐसा कहने के पीछे अवश्य कोई पारमार्थिक रहस्य होगा, वो आप बता देना तो बता देंगे। गुरुदेव ने एक दफे ऐसा प्रश्न किया था कि सोना का क्या भाव है, क्या पूछा,
सोना का भाव,
सोना का क्या भाव है, तो कोई बोले कि 5000 रुपया तोला, तो कह रही 5500 तोला, कह नहीं आजकल तो 4800 रुपया चलता है, अपन जिसको जिसके क्या खबर थी सब भाव बोलने लगे, तो गुरुदेव हंस गए, हम ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं, हमको कोई सोना खरीदना नहीं और पत्नी वगैरह है नहीं तो कोई अलंकार गहना आभूषण बनाना हो हमको, ये तो कोई बात है नहीं, तो फिर हम सोने का भाव क्यों पूछे, भाव मैंने स्वभाव क्या है वो हम पूछते हैं, कि सोने का स्वभाव क्या है, उसका कीमत का मैं भाव क्या है वो बात हमको पूछने के कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमको इसका कोई उपयोग नहीं है, तो बात वो है, वो पैसा रुपये का भाव तो कौन पूछे, जिसको खरीद करना हो वो पूछे, अलंकार बनाना हो वो पूछे, तो कोई बात थी नहीं, वो प्रसंग ही नहीं था, फिर भी सोने का भाव पूछा तो पहले तो सब ताजू हो गए कि गुरुदेव को सोने का भाव पूछने का क्या कारण है, भाव मैंने स्वभाव क्या है ऐसा पूछा, वस्तु का स्वभाव वो स्वभाववादी होते हैं, ज्ञानी क्या होते हैं, तो हर बात में वो स्वभाव को ही स्वभाव देखने का उनका नजर रहता है, तो वो बात थी, मतलब ऐसे कभी बात बनती भी है तो उसमें कोई दूसरी बात होती है, हाँ ये बात, ये तो विचार की बात आई, लेकिन आचरण कैसा भी आचरण हो वो वंदनीय है, क्या कि किसी भी
धाकड़ धाकड़
ठीक बात है। हाँ हाँ अगस्त में वचन है, एक जगह वो दादा वचन लिखे हैं ना, इसने कि अगर तुमको मानना है तो मेरा धाकड़े धाकड़ मानना है, मैंने पूरा पूरा मानना है, एक बात को मानना दूसरी बात को नहीं मानना है तो स्वच्छंद हो जाएगा और अभक्ति हो जाएगी, ऐसा होना चाहिए नहीं। सौ बात में से 99 को तो माने और एक को नहीं माने, तो 99 को भी मानता है, ऐसी बात है। तो इनका कोई रिश्तेदार थे तो, वरना तो वो उनके यहाँ तो कोई उत्तर रहते नहीं, तो अपने निवास स्थान में तो कौन कोई सगे हो वो ये उतरते हैं, बाकी मुमुक्षु लोग तो कृपालु देव के घर के निवास स्थान में तो नहीं उतरे, तो आए थे बाहर गांव से, देश में से आए, शाम को खाना भी खाया और रात को फिर भी कोई चर्चा धर्म चर्चा नहीं निकाली, तो उनको लगा फिर ये क्यों आया है, मेरे पास तो कोई व्यवहार का तो काम मैं संभालता नहीं, व्यवहार किसी से कोई व्यवहार में तो रहते नहीं थे, कोई व्यवहार का प्रसंग भी नहीं था, तो समझे कि कोई धर्म चर्चा आपने जिज्ञासा लेकर आया होगा, लेकिन बात तो कुछ निकाली नहीं। शाम हो गई, खाना खाया, सोने का टाइम हुआ, 9-10 रात का बज गया, सोते वक्त चला करके पूछा कितनी करुणा थी, तृषा लगी है पानी पियोगे, तो मैं तो चौबियार करता हूँ, आप हम तो साथ में चौबियार कर लिया, मुझे आप अपन तो साथ में ही चौबियार कर लिया है, मैं तो कृपालु देव भी चौबियार तो करते थे, तो फिर ये बात आप कैसे करते हो, तो कोई बात नहीं सो जाओ तुम, क्या बोले कोई बात नहीं तुम सो जाओ, क्योंकि वो समझ नहीं सके कि ये चौबियार की बात नहीं चल रही है, ये तृषा लगी मतलब कोई जिज्ञासा है तुमको, तो धर्म के विषय में हम कुछ बात कर सकते हैं, और तुम्हारा समय जो फालतू का जा रहा है वो नहीं जाएगा, तो क्योंकि इनको कोई दरकार है नहीं, तो फिर बिना तृषा पानी पिलाने का कोई फायदा नहीं, कि तुम सो जाओ सो जाओ, तुम सो गया। ऐसे एक दूसरे कोई सगे आए थे, तो वो भी कुर्सी सोफा पर बैठे बैठे बीड़ी पीते थे, परुदेव भी बैठे थे सामने बैठ करके, वो उतना भी विनय नहीं था कि इनके सामने बीड़ी नहीं पिया जाता, तो फिर बीड़ी पीते पीते प्रश्न निकाला, ऐसा है रायचंद भाई, रायचंद भाई क्या हो, तो उनको तो कोई विनय भी नहीं तो था नहीं, मोक्ष कैसे होता है वो बताइए आप तो जानकार आदमी है, धर्म के लोग मानते हैं कि ज्ञानी है, तो मोक्ष होता है वो बताओ ना, ठीक बीड़ी पीते पीते प्रश्न पूछा तो बस जैसे है वैसे रह जाओ मोक्ष में तो निष्क्रिय दशा होती है, तो आप जैसे है वैसे निष्क्रिय रह जाओ मोक्ष हो जाएगा क्या समझे बेचारा कुछ नहीं समझे, वैसे चित्र विचित्र कई प्रकार के प्रश्न तो बनते हैं। 569 पूरा हुआ, अब जो है 913 ले रहे, 913 पत्र हिंदी में 656 पेज नंबर 656 है, गुजराती में 644। ये वनमाली दास करके गोधावी गांव के एक मुमुक्षु थे, इसके पर ये पत्र लिखा गया है। पत्र का जो विषय है उसमें असाता वेदनी सभी देहधारी प्राणी को आती ही है, क्योंकि वेदनी कर्म के दो प्रकार के उदय होते हैं, साता और असाता। कभी साता होती है उदय में, कभी असाता होती है। अकेली असाता हो और अकेली साता हो, ऐसा हमेशा नहीं बनता। तो असाता तो आएगी आएगी, और कोई असाता की पीड़ा को कोई चाहते नहीं है। नहीं चाहते हुए भी अनिवार्य रूप से असाता आती है, अवश्य आती है। और जीव को दुख नहीं भोगना है तो उस दुख टालने की जो आवश्यकता महसूस होती है, जरूरत लगती है, उस जरूरत के कारण से कुछ महात्माओं ने उसका संशोधन किया है कि असाता के काल में भी दुख नहीं भोगे, ऐसे ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है क्या? कि बन सकती है। तो ये जो वनमाली दास को कोई असाता का उदय है और उस उदय में भी वो कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन प्रेरणा देने के लिए ये पत्र लिखा है। प्रारंभ का विषय वो है और बाद में जो असाता के काल में भी अगर कोई वेद ज्ञान का प्रयोग करता है तो उसको स्वानुभव भी हो सकता है। उस वेद ज्ञान की विधि क्या होती है, कार्य पद्धति क्या होती है, इसका सूक्ष्म विषय इस पत्र में आया है। सारे ग्रंथ में वेद ज्ञान का सूक्ष्म विषय यानी विधि का सूक्ष्म विषय इस जगह खुल करके आया है। बाकी गुड भाव से गुड शब्दों में तो कई जगह बात आत्मसिद्धि वगैरह में कर दिया है, लेकिन यहाँ तो खुल करके बात आया है। हाँ, वेद ज्ञान जो समय सार का खास विषय है वो विषय यहाँ खुल करके सूक्ष्मता से सूक्ष्म बातें लिखी। पत्र प्राप्त हुआ, क्या लिखते हैं कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। यहाँ समाधि है, हमको तो समाधि भाव है, हम आत्म समाधि में रहते हैं। अकस्मात शारीरिक असाता का उदय हुआ है और शांत स्वभाव से उसका वेदन किया जाता है ऐसा जानते थे और इससे संतोष प्राप्त हुआ था। क्या लिखा है कि आपको मनवाली दास भाई को अकस्मात, मैंने आगे पीछे कोई कारण ऐसा नहीं होगा, शारीरिक असाता का उदय हुआ है ऐसा हमको समाचार मिला और आप उस उदय में शांत भाव से उसका वेदन भी कर रहे हो ऐसा भी जाना, ऐसा जानते थे तो हमको संतोष हुआ कि चलो आपके परिणाम की स्थिति तंदुरुस्त है। शरीर में असाता है किंतु आपके परिणाम की स्थिति बहुत अच्छी है, तंदुरुस्त है, वो हमारे लिए संतोष का कारण है। यानी पुरुष का संग हुआ हो और उस संग से कोई लाभ होता है तो वो होता है कि असाता हो, प्रतिकूलता हो, अनेक प्रकार के उसमें परिणाम है वो बिगड़ते नहीं है, शांति से उस उदय को विसर्जन करते हैं। तो यानी को लगता है कि चलो उसको संग का लाभ तो हुआ, ये संतोष का कारण है। प्रसन्नता बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, पात्रता योग्यता में पात्रता बढ़ती है तो प्रसन्नता बढ़ती है। नहीं, वनमाली दास करके कोई गोधावी गांव के मुमुक्षु थे, वनमाली दास कैसे नाम पूरा लिखा है ना, उम्मीद राम मनमाली दास उम्मीद राम गोधावी, गोधावी करके गांव है, वहां पत्र लिखा है। पत्र लिखा है 33वें साल में धर्म पुरुष है, कृपालु देव का आयु 1 साल बाकी रहा है। चैत्र 4 का ये पत्र लिखा है 1956 के 1957 के चैत्र वद पांचम देहांत का दिन है, समाधि दिन है, एक साल बाकी रहा। खुद का भी सात अकाउ दे था, अस्वस्थ थे और धर्मपुर में वो कुछ हवा पानी का फर्क के लिए ठहरे हुए थे। ये धर्मपुर आया, वासद से बोरसद नो तक आते हैं ना ऊपर, हाँ वासद से बोरसद तक आते, बीच में धर्मपुर का माइलस्टोन आता है। दूसरा कोई धर्मपुर? अच्छा धर्मपुर वहाँ भी आता है। अच्छा वहाँ आए होंगे, मालूम नहीं क्या
हाँ
वहाँ ठीक आया धर्म है शांत स्वभाव से वेदना। मैंने अगर उस वक्त मुमुक्षु जीव अपने अशाता के उदय के काल में अगर मुमुक्षु जीव अपनी जिस भूमिका में हो उस भूमिका के लायक प्रयोग करता है, क्योंकि मुमुक्षु का प्रयोग की भूमिका से ही चालू होती है, उस भूमिका का वो प्रयोग करता है तो उसका परिणाम नहीं बिगड़ेगा, वरना पीड़ा के काल में परिणाम बिगड़े बिना रहेगा नहीं, ये बात होने वाली है। तो उस वक्त जो परिणाम नहीं बिगड़ेगा वही उसकी उस भूमिका का शांत स्वभाव है, उस भूमिका का वही शांत स्वभाव है, क्योंकि शांति नहीं हुई। तो ऐसा जानकर हमको प्रसन्नता हुई है, ऐसा लिखते हैं। अब विषय को स्पष्ट करते हैं कि समस्त संसारी जीव कर्मवशात साता साता के उदय का अनुभव किया ही करते हैं। आठों कर्म का उदय संसारी जीव को हमेशा हमेशा होता ही है। उसमें वेदनी कर्म भी आठ में है, उसका भी उदय चालू रहता है, या तो साता या तो असाता या तो मिश्र, कुछ साता कुछ असाता, लेकिन उदय तो चालू रहेगा रहेगा और रहेगा ही। समस्त संसारी जीव कर्मवशात, मैंने जो कर्म संचित कर्म है, बांधे हुए कर्म है, वो धारावाही उदय में आते हैं, वो साता साता के उदय का अनुभव किया ही करते हैं और उसका उसको अनुभव भी रहता है उदय में। जिसमें मुख्यतः तो असाता के ही उदय का अनुभव किया जाता है। अब जो मनुष्य है या प्राणी है उसको असाता का वेदनी का उदय ज्यादा रहता है, साता तो बहुत कम रहती है। असाता कुछ न कुछ, कुछ न कुछ असाता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अच्छे तंदुरुस्त तगड़े शरीर वाले को भी देखो तो बोलेगा हमको ये होता है, हमको वो होता है। एक डॉक्टर आएगा तो सब अपनी अपनी शिकायत चालू कर देगा, आपको मालूम, आपको तो मालूम होगा। ये तो डॉक्टर गांगुली आए थे, तो पैसे तो वो लेते नहीं है, लाइन लग गई। फिर वो बोले कि देखो मैं कोई बुखार या खांसी इसका इलाज नहीं करता, मेरा कोई जनरल प्रैक्टिस नहीं है, मेरा प्रैक्टिस तो ऐसा है कि कोई गंभीर रोग हो, आपकी समस्या हो तो मेरे सामने लाओ, ये मैं करता हूँ, मेरा टाइम ऐसे बिगाड़ना आपको नहीं चाहिए। लेकिन कोई आ जाए, चार दिन से खांसी हुआ है क्या करें, तीन दिन से बुखार आता है क्या करें, वो इनका काम बता देते थे लेकिन उनको ठीक नहीं लगा। मतलब क्या है कि किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, अरे खुद डॉक्टर को भी कुछ न कुछ न कुछ, कुछ न कुछ असाता का उदय प्राय चालू रहता है। वो ठीक लिखा है, कि जिसमें मुख्यतः तो प्राणी को असाता का ही उदय अनुभव किया जाता है, पचित कभी कभी पचित अथवा किसी देह संयोग में साता का उदय अधिक अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है। पचित मनुष्य और तिरियंच को और किसी देह संयोग में मैंने देव को साता का उदय अधिक अनुभव में आता हुआ, क्योंकि देवलोक में तो असाता है ही नहीं, अधिक उसको साता का उदय देखने में आता है, दिखाई देता है। परंतु वस्तुतः वहां भी अंतर्दाह जला ही करता है। देवों को शरीर की असाता नहीं है, अंदर में अग्नि राग की अग्नि राग आग दहे सदा ताते समामृत अंतर्दाह, राग की दाह बहुत है, जितना राग है उतना आत्मशांति का वो जलाता है, आत्मशांति को वो जलाती है। इसलिए वस्तुतः मैंने वास्तविकता से देखा जाए तो वहां भी अंदर में दाह, अंदर में राग का दाह शांति को जलाती है, आत्मा की शांति को उत्पन्न नहीं होने देती। पूर्ण ज्ञानी भी जिस असाता का वर्णन कर सकने योग्य वचन योग नहीं रखते, वैसे अनंत अनंत असाता, असाता कभी कभी ऐसी बढ़ती है कि अनंत असाता हो जाए, नाकी में होती है, तीव्र असाता है, केवल ज्ञानी भी इसका वर्णन कर सके नहीं। पूर्ण ज्ञानी मैंने केवल ज्ञानी की वाणी भी इसका वर्णन करने के लिए असमर्थ है, पूरा वर्णन करने के लिए हूं। कुछ वर्णन तो आता ही है, जितना वर्णन आया है वो तो केवल ज्ञान से ही आया है, क्योंकि यहाँ तो नरक दिखने में आए नहीं प्रत्यक्ष, तो केवल ज्ञान से बात तो बार आई है, लेकिन केवल ज्ञान वाले भी पूर्ण वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि ये वेदन का विषय है, वेदन का विषय वेदन से समझ में आता है, वाणी से समझ में नहीं आता है, और वाणी में आ भी नहीं सकता, वेदन का विषय वाणी में आ भी नहीं सकता है। क्या लिखा, पूर्ण ज्ञानी भी जिस असाता का वर्णन कर सकने योग्य वचन योग नहीं रखते, उनके दिव्य ध्वनि में भी वो योग नहीं है कि पूरा वो बता सके वेदन को, वैसे अनंत अनंत असाता इस जीव ने अनंत बार भोगी है, कह नहीं सके। और यदि अब भी उनके कारणों का नाश नहीं किया जाए, ये असाता उत्पन्न होने का कारण जो है मिथ्यात् और अज्ञान, उसका नाश नहीं किया जाए तो भोगनी ही पड़ेगी, फिर अनंत बार भोगनी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से भोगनी पड़े, यह सुनिश्चित है, ये बात पक्की समझो। ऐसा नहीं कि हम पुण्य करके साता में रह जाएंगे, कोई साता में हमेशा रह सकता नहीं है, देव भी च्युत होकर के एक इंद्रिय आदि में चला जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ, वो तो ज्ञानी के उपदेश में चारों अनुयोग आएगा आएगा और आएगा ही, दिव्य धन जैसी बात होती है, दिव्य धन में जैसे चारों अनुयोग आता है, ऐसा थोड़ा बहुत ज्ञानी के वाणी में अवश्य अवश्य आता ही है, दिव्य ध्वनि जैसी बात है, दिव्य ध्वनि समझो ना, जिस दिव्य ध्वनि से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, वैसे ज्ञानी की वाणी से भी किसी न किसी जीव का कल्याण होगा होगा, और वो वाणी कभी वंध्या रहती नहीं है, तो सफल होती है, कोई न कोई तो सपुत जागते ही है, ऐसा बनता ही है, तभी वाणी खेलती है, वरना वाणी अनेक नानी हुए वाणी नहीं हुआ उसका, बोले ही नहीं कुछ, बोले तो कोई न कोई का भला होने वाला है, कल्याण होने वाला, ऐसा समझ लेना। ऐसी अनंत साता भोगी है, यदि अब भी उनके कारणों का नाश न किया जाए तो भोगनी पड़े, यह सुनिश्चित है, ऐसा समझकर ये बात विचारवान पुरुषों ने समझ लिया, ऐसा समझकर विचारवान उत्तम पुरुष विचारवान और उत्तम पुरुष उस अंतरदारु साता और बाह्य अभ्यंतर संक्लेश अग्नि रूप से प्रज्वलित असाता, इसका अत्यंतिक वियोग करने का, मूल से खत्म करने का मार्ग की गवेषणा करने के लिए तत्पर हो गए, उसके संशोधन चालू किया। बहुत सुंदर बात लिखा है। और उस सन्मार्ग की गवेषणा करी, किया, प्रतीति किया और उसका यथा योग्य आराधन किया, और आराधन करके अव्यावाद सुख स्वरूप अपने आत्मा को सहज शुद्ध स्वभाव रूप परम पद में लीन हो गए, ये इसका नतीजा आया। ऐसा किया, जरा विस्तार से लेंगे इस बात को।